लघुताई जाती भई अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी विपाक ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो है सतत केवल ज्ञान पाने पूजो है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग धर्म का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर पद को पाने में जो सहयोगी 16 भावनाएं हैं उन पर विचार कर रहे हैं। भक्ति भी हमारी भावनाओं को निर्मल बनाती है और भावनाओं की निर्मलता से तीर्थंकर पद प्राप्त किया जा सकता है। लगता तो जरा मुश्किल काम है कि भक्ति से भी कहीं किसी को मुक्ति हो सकती है, पर है एकदम सही बात। यहां तक सही है कि भक्ति के बिना भी मुक्ति नहीं हो सकती। भक्ति से मुक्ति होती है, ये जितनी सच्चाई है उतनी ये भी सच्चाई है कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अरहंते सोभक्ति सम्मत्तम, क्योंकि अरहंत भगवान में जो शुभ अनुराग रूप भक्ति है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और बिना सम्यक दर्शन के आज तक किसी को मुक्ति नहीं हुई। इसलिए कथंचित अगर यह कहा जाए कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती तो यह भी सच है। भक्ति का जो स्वरूप है वो अवश्य समझना पड़ेगा और भक्त के अंदर किस तरह की भावना होनी चाहिए यह भी जानना होगा। भक्त के मायने क्या होता है सब जानते हैं। विभक्त होना मतलब जुदा हो जाना, अलग हो जाना, पृथक हो जाना, और भक्त यानी जुड़ जाना। जो जुड़ सके किस से, अपने ही आत्मा के स्वरूप से, या उनसे जिन्होंने कि अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है वो कहलाएगा भक्त। उसके द्वारा जो पूज पुरुषों के गुणों में अनुराग है, भाव शुद्धि पूर्व का अनुरागा भक्ति, भावों की शुद्धि पूर्वक जो अनुराग होता है, एक तो विषय अनुराग होता है, इसलिए भाव शुद्धि पूर्वक जो अनुराग है पूज पुरुषों के प्रति, इस प्रकार का जो जुड़ना है वो कहलाएगी भक्ति। भक्ति का वास्तविक स्वरूप यही है कि जिसमें हम, जिसकी भक्ति की जा रही उसके स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसके मात्र बाह्य रूप का नहीं उसके अंतरंग स्वरूप का दर्शन करते हैं और उस स्वरूप से मिलने वाला संदेश ग्रहण करते हैं और उस संदेश को प्राप्त करके अपने जीवन को भी ठीक वैसा ही बनाने का प्रयत्न करते हैं जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं उसके जैसा। ये जो है भक्ति का वास्तविक ढंग है। भक्ति बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार से की जाती है, जिसे हम व्यवहार और निश्चय भक्ति कहें तो भी कह सकते हैं। कनत स्वर्णाभासो अपगत तनुर ज्ञान निपो विचित्रात्मापि एको नृपतिवर सिद्धार्थ तनिया अजन्मापि श्रीमान विगत भव भक्ति अद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भक्ति करने का इतना सुंदर ढंग देखें अपन कि देखता हूं भगवान बाहर से सोने जैसी आभा आपकी दिखाई देती है, शरीर की है वो, आप तो शरीरातीत हो गए हैं, ज्ञान शरीरी है। एक तरफ बाह्य देह की सोने के समान आभा, दूसरी तरफ अंतरंग में केवल ज्ञान से युक्त अशरीरी स्वरूप। बाह्य में नाना रूप बालक का युवा का, लेकिन हैं आप अंतरंग में एक ही। कहने को राजा सिद्धार्थ के घर जन्मे उनके पुत्र हैं, लेकिन वास्तव में तो आप जन्म मरण से पार हो गए हैं, अपार वैभव के बीच बैठे हैं, श्रीमान हैं, लेकिन विगत रागो, लेकिन आप राग से रहते हैं अद्भुत गति। वास्तव में ऐसा आपका अद्भुत स्वरूप है, गुणों के प्रति अनुराग होना, गुणों का चिंतन करना, गुणों का अनुभव स्मरण करना और वैसे ही गुणों को पाने का प्रयत्न करना, ये भक्ति में सब चीजें हैं। तो विचार कर रहे हैं बाह्य और अंतरंग सब गुणों का। भक्ति में तो माता पिता के माध्यम से भी भक्ति करते हैं। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम। जैसे कि पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है, अन्य दिशाओं में तो नक्षत्र हो सकते हैं, सूर्य का उदय तो पूर्व में ही होता है, ऐसे ही सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन आपके जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां का मातृत्व सार्थक है। मां की भी स्तुति कर रहे हैं तीर्थंकर के माध्यम से, और सिर्फ अकेली देह की स्तुति करने को भी स्तुति कह रहे हैं, भक्ति कह रहे हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्क्यु नई कललाम भूत धावंते खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम रूपम नास्ति। इसीलिए तो आपके जैसा कोई अद्भुत रूप नहीं है, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे शांति के और वितरागता के परमाणु थे वे तो सब आपकी देह को बनाने में लग गए, अब बचे ही नहीं, सो दूसरे को क्या मिलेंगे, अर्थात दूसरा आपके जैसा कोई नहीं है। देखिएगा शरीर की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति नाना प्रकार से की जाती है, उस सब में प्रमुखता तो गुणों के प्रति अनुराग, गुणों का चिंतन, गुणों का स्मरण और उन्हीं गुणों को प्राप्त करने का भाव, ये भक्ति में अनिवार्य है। सामान्यतः भक्ति करने वाला अपने उस आराध्य को ही कर्ता और स्वामी मान लेता है। यहां जाकर के फिर भक्ति मोक्ष मार्ग में थोड़ी सी मुश्किल डालने वाली हो जाती है। अगर कोई अपने आराध्य को अपने कल्याण में निमित्त माने तो कोई हर्जा नहीं, और अगर ये माने कि मेरे आराध्य ही मेरा कल्याण कर देंगे तब तो फिर ये जो भक्ति है वो अत्यंत स्वार्थपूर्ण भक्ति है और स्वरूप को समझे बिना की जाने वाली भक्ति है। ऐसी भक्ति मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखना। एक तरफ तो कहेंगे कि मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, आप ही को कन्ने जो कछु हमारे बस को नहीं है, हम तो आ गए आपके पास। पहले तो यही सरेंडर तो पहले होना पड़ेगा, मोरी तो से बनी ताते करत उपाय। और फिर धीरे से जब भक्ति शुरू करते हैं तब क्या कहती कि धोखे में नहीं रही हो भगवान। हाँ, भगवान से कहती कि धोखे में नहीं रही हो, मुझ कारज के कारण सुआ, कारी मेरे भीतर होगा, मेरे उपादान के अनुरूप होगा, आप कारण बनोगे, ठीक है मैं बनाऊंगा इसलिए बनोगे। इतना स्पष्ट सोच जिसके अंदर है उसकी भक्ति जो है वो सम्यक दर्शन में कारण बनती है, और वो जो सम्यक दर्शन है जो कि ज्ञान और चारित्र से समन्वित है वो उसके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है और तीर्थंकर पद की प्राप्ति में तक कारण बन जाता है। भक्ति भी मुक्ति का कारण है, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ये बात इसलिए ठीक जान पड़ती है, ठीक है भी। सहसा तो लगता है कि अरे वाह ऐसे कैसे हो सकता है, पर अगर थोड़ा सा विचार करें, आचार्यों ने तो लिखा कि भक्ति वास्तव में गंगा के समान है, लोग वायु में पवित्रता के लिए गंगा में स्नान करते हैं, अगर वास्तव में अंतरंग की पवित्रता का उपाय करना हो तो भक्ति रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। भक्ति रूपी गंगा जिसमें कि परिणामों की निर्मलता की लहरें उठती हैं, वे सारी मन की कलुषता को हटा करके एक तरफ डाल देती है। लेकिन मन में अत्यंत श्रद्धा हो तभी वह भक्ति मन की मलिनता को हटाने में और निर्मलता को प्रकट करने में कारण बनती है। बिना श्रद्धा के नहीं होगा। आप देखें कि ये श्रद्धा कैसी होनी चाहिए ताकि भक्ति ठीक हो सके। भक्ति का स्वरूप तो हमने जान लिया, अब अनंत भगवान की भक्ति भी तीर्थंकर पद के पाने में कारण बन सकती, सिद्ध भगवान की भक्ति बन सकती, ऐसा क्यों नहीं कहा। सोलह कारण भावना में अरहराचारी बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानिर मार्ग प्रभावना, ऐसा तो लिखा कि चार प्रकार की भक्ति, अरहत आचारी बहुश्रुत और प्रवचन, ये चार भक्तियां तीर्थंकर पद के पाने में कारण है, सिद्ध भगवान की भक्ति कारण नहीं। कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा होगा, कोई ना कोई प्रयोजन तो इसका रहा होगा। हम भी जब पंच नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं तो पहले अरहंत भगवान को ही प्रणाम करते हैं, फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। कारण बहुत स्पष्ट है कि अरहंत भगवान परम गुरु हैं, उनके बिना मोक्ष मार्ग बताने वाला कोई और नहीं है। अरंत और सिद्ध का स्वरूप भी बताने वाले परम गुरु अरंत हैं। इसलिए हम पहले जिसका हमारे ऊपर साक्षात उपकार है उन साक्षात उपकारी अरंत भगवान को ही प्रणाम करते हैं, और इसी दृष्टि से सर्वज्ञ हितोपदेशी और वीतरागी, सर्वज्ञ और वीतरागी तो सिद्ध भगवान भी हैं, लेकिन सर्वज्ञ हितोपदेशी और वीतरागी स्वपर कल्याण में निमित्त जो है उसकी भक्ति करने से वह पद मिलेगा जो स्वपर कल्याण में कारण बनेगा। तीर्थंकर का पद ही ऐसा पद है जो स्वपर कल्याण में कारण बनता है, प्राणी मात्र के कल्याण में कारण बनता है। इसलिए सिद्ध भक्ति ना रख करके अनंत भक्ति को ही सोलह कारण भावनाओं में शामिल किया है। हम देखें कि अनंत भगवान के कौन कौन से गुण हैं और फिर देखेंगे कि हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। अभी तो हमारी श्रद्धा जरा दूसरी है, अभी तो हमारी श्रद्धा में बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि सकाम भक्ति नहीं होती, होती भैया, कामनाओं से युक्त होकर के भी भक्ति की जाती है और निष्काम भाव से भी भक्ति की जाती है, लेकिन कामनाएं सांसारिक हैं या पारमार्थिक हैं ये विचार करना पड़े। निष्काम भक्ति तो ध्यान ही है वास्तव में देखा जाए तो। निष्काम भक्ति और ध्यान दोनों एक ही चीजें हैं, जो हम शुभ उपयोग रूप भगवान की भक्ति करते हैं वो तो सकाम ही है। आप संसार मांगना चाहो और चाहे परमार्थ संसार से पार होना चाहो, दोनों के लिए। अब हमारी भक्ति से तो हमने आज तक संसार ही मांगा है, संसार का वैभव मांगा, संसार के सुख मांगे। जिन चीजों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ मान करके अपने को जिनसे अलग कर लिया, हमने उन्हीं चीजों से जुड़ने के लिए भगवान से जुड़ना स्वीकार किया। भगवान से जुड़े इसलिए हैं कि बाकी सब चीजों से जुड़े रह गए, हां संसार से जुड़े रह गए, संसार सदो रह गए। विचार करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं भाव अंतरंग में है कि सब काम अच्छे चलते रहे, दुकान अच्छी चलते रहे। कई बार तो ऐसा लगन लगत के जा करी हमने पूजा बारे होनी करता है, लड़का ने कही कि एक और कर लिया, तो एक ही लाख गिरे, एक और कर ली से दो गिर जाए। कई बार तो ऐसा भाव आने लगता मन में, नहीं ये सकाम भक्ति जो है वो संसार बढ़ाने वाली है। भाई ये चीजें क्या मांगना, छोटी मोटी चीजें। बड़े आदमी के पास जाओ और दो पैसा मांगो, अरे ये तो मांगने का ढंग नहीं मालूम। चक्रवर्ती की आरती उतारी थी एक व्यक्ति ने, कैसी, बहुत बड़े कुपरा में छोटो सो दीपक जला के उतारी थी। अरे रकीब में धर ली थी, बहुत बड़े कुपर में छोटा सा दीप रख के आरती उतारना इस बात का प्रतीक है कि आपके पास आया हूं, आप बहुत बड़े हो, मुझे खाली नहीं लौटाओगे, ये पूरा भर करके लौटूंगा। बड़े से तो बड़ी चीज मांगो, और जिसके पास है उससे वो मांगो। परचून की दुकान पे कपड़ा मांग भी नहीं जाओ, ने कपड़ा बारी से परचून की चीज मांगो। अगर सकाम भक्ति करनी ही है तो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी से उनके जैसे बनने की, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति की कामना करें। दुख कहो कम्मक कहो हो ही लाओ, सुगई गमनम समाही मरणम, जिनगो संपत्ति हो मच्छम। आपसे क्या कामना करूं, मेरे दुखों का क्षय करने के लिए आया हूं, और दुखों का क्षय मुझे मालूम है मेरे कर्मों के क्षय से होगा, और कर्मों का क्षय बिना रत्नत्रय बोधि की प्राप्ति के नहीं होगा, और बोधि अकेले से भी नहीं होगा। जब तक मैं समाधि पूर्वक मरण नहीं प्राप्त करूंगा तब तक सैकड़ों दफे मरण करना पड़ेगा, इसलिए मुझे समाधि मरण भी दो, बोधि भी दो। मुझे तो दुखों का क्षय और कर्मों का क्षय करना है, ज्यादा क्या मांगू। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, आपके जैसे गुणों की संपदा जो मेरी अपनी निजी है वो मुझे प्राप्त हो। और कोई कामना लेकर रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, आपसे तो सिर्फ यही मांगने आया हूं। सकाम भक्ति भी की जाए तो इस तरह से की जाए, और वास्तव में तो भगवान के गुणों की भक्ति करते समय तो अनंत भगवान के गुण अगर अपन विचार करें तो कैसे हैं अनंत भगवान, अनंत भगवान का स्वरूप कैसा है। अत्यंत वीतरागी हैं, हम उनकी भक्ति करते समय क्या सीखें, वीतरागता का पाठ सीखें। अनंत भगवान ने अपने कर्म शत्रुओं को जीत लिया है, अर्थात उनका कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं। हम अपने जीवन में झांक के देखें कि दिन भर में मित्रता कितनी बरकरार रहती है, कितनी शत्रुता निर्मित कर लेते। जिसकी भक्ति करने आया हूं उसकी तो शत्रुता ही खत्म हो गई, प्राणी मात्र से मैत्री है, मेरी है कि नहीं है। गुणों का अगर अपने भीतर मिलान करके देखना है तो ऐसे देखना पड़ेगा। सर्वज्ञ हैं जिनके पास सब बातों का समाधान है, जो सब जानते हैं। है आज अपने पास अपने जीवन का समाधान नहीं है, अपने समीप आने वाले का क्या अपन समाधान कर पाएंगे? दूसरे के जीवन का समाधान न कर पाए तो कम से कम दूसरे के जीवन में समस्याएं तो उत्पन्न न करें, इतना तो कर ही सकते। अनंत भगवान की भक्ति करने वाला दूसरे के जीवन की समस्याओं का समाधान न कर सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे के जीवन में मेरे जीवन से कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इतना पुरुषार्थ तो किया जा सकता है। मेरे से किसी की शत्रुता ना हो, दूसरा मेरे से शत्रुता रखे वो उसकी अपनी चॉइस, वो उसका अपना निर्णय। मेरा निर्णय, मेरी चॉइस तो यह है कि मेरी शत्रुता किसी की नहीं, किसी से नहीं, क्योंकि मैं जिनकी आराधना करता हूं उनके तो प्राणी मात्र ही मित्र है, उनका तो कोई शत्रु नहीं। इतनी विशुद्धि चाहिए जिससे कि सबके जीवन को समाधान मिले। मैं जब मुक्तागिरी में सन 1980 में आचार्य महाराज के चरणों में, और उस समय तो मैं उनकी कृपा से क्षुल्लक अवस्था में था, तब प्रवचन सार जी का अध्ययन कर रहा था। मैंने तो इसके पहले बाल बोध पढ़े थे, आचार्य महाराज के चरणों में बैठ करके जैन सिद्धांत प्रवेशिका के 600 प्रश्न याद किए थे। आचार्य श्री ने तो इतना ही कहा था कि समझाऊंगा नहीं, समझ में तो तुम्हारे अपने आप आ जाएगा, तुम तो इनको रट लो, बस 600 परिभाषाएं रट लो। आज भी वो काम आती हैं। अब तो जो तत्व चर्चा चलती है बिना परिभाषा के हवा में चलती, तत्व चर्चा परिभाषा के अनुसार देखें जो आचार्य भगवंतों की परिभाषाएं, फिर देखें कि कहीं कोई समस्या नहीं है, समाधान ही समाधान है। तो वो वहां से शुरुआत की थी। कई प्रश्न उठ जाते थे मन में, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम तो अल्प है, आचार्य भगवंतों की वाणी तो उस क्षयोपशम में समाती नहीं है, वो तो अपार है, तो सहज है कि समझ में नहीं आने पर प्रश्न तो मन में उठता ही है कि ये स्वरूप कैसा है। सो जाकर के एक दिन 10-25 ठो जो प्रश्न मन में थे, जिनका समाधान चाहिए था, वो लिख करके आचार्य महाराज के चरणों में जाके बैठ गया। मैं वे अपने काम में लगे थे, कुछ दूरी पर बैठ गए कि जब महाराज काम से, अब की बात अलग है कि हम आओ पहले कर दो, हम आए हैं, सो आप अपनों कह करें यू बाद में, हमें इसे क्या मतलब, हम आए सो हमसे बोलो, हमसे बात करो और हम आओ काम करो, ये अब की बात है। उन्हें करो तो बाहर जाके हम कहें कि तो उन्हें नहीं से बतिया रही थी, हम तो बैठ ही रहे घंटा, हमसे तो कछु कही नहीं है जी। अपनी भक्ति है, अपनी भक्ति का स्वरूप अलग है, ये संसार बढ़ाने वाली भक्ति है, और जिसमें निर्मलता है। तो जाकर के मैं बैठा वहां पर और अपने प्रश्नों को देख रहा हूं कि इनके समाधान चाहिए। 5-7 मिनट हुए और मैं प्रश्नों को पढ़ता जाता हूं और लगता है इसका उत्तर तो महाराज ने ये बताया था, इसका ये बताया था जब पढ़ा रहे थे तब, ये तो सब मुझे आते हैं, मैं व्यर्थ ही महाराज के पास आकर के और उनका समय खराब करूं, ये प्रश्नों के उत्तर तो मुझे मालूम ही है। अभी जब वहां से चला था तब एक भी नहीं मालूम थे, और अब यहां चरणों में बैठा हूं तो सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम है। ऐसा विचार करके जैसे ही उठने को हुआ नमोस्तु करके, तो आचार्य महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा बस ये और लिख लूं, बस दे तो रहा हूं जो आप काहे को जा रहे हो। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आवश्यकता नहीं, अब आप अपना काम करिएगा, मैं तो जो प्रश्न पूछने आया था सब मेरे समाधान हो गए, आपके पास बैठने मात्र से समाधान। जिसका सानिध्य प्राणी मात्र के समस्याओं का समाधान करे, वो विशुद्धि कैसी होती होगी? अनंत भगवान की जहां बैठे हुए हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर उसे अपनी अपनी भाषा में सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी विचार करें कि ऐसा गुण मेरे भीतर भी छिपा हुआ है, मैं भूला हुआ हूं। वो विशुद्धि से मेरे अंदर प्रकट होगा, मैं कम से कम इतनी विशुद्धि तो बढ़ाऊं कि मेरे जीवन से किसी के जीवन में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, हो सके तो मैं दिन भर में किसी की भी समस्या का समाधान कर सकूं, मैं राग द्वेष से बच सकूं क्योंकि मैं वितरागता का उपासक हूं। और जब भी मैं किसी को कुछ कहूं तो वह उसके हित के लिए कहूं, अहित के लिए ना कहूं, क्योंकि मैं हितोपदेशी भगवान का भक्त हूं। ये तीन ही गुण जिनकी की मैं आराधना करता हूं, जिनकी मैं भक्ति करता हूं, उन गुणों को जिनको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उनका विचार तो करें जरा कि हां वास्तव में तब कहलाएगी अनंत भक्ति। रावण प्रसिद्ध हुआ अनंत भक्ति में, ये ध्यान रखना। जिस रावण के और एक ही अवगुण है जो उसके पतन का कारण बना था, अत्यंत विद्वान और अनंत भगवान की उपासना करने वाला, अनंत भगवान की भक्ति में उनका नाम आता है। इतनी अपार श्रद्धा और एकाग्रता थी, विद्याधर तो थे ही रावण, प्रति नारायण भी थे, महापुरुष हैं ये, सलाका पुरुष। तद्भव मोक्षगामी तो नहीं होते, लेकिन अल्प संसार है, भव्य जीव हैं, मोक्ष तो इनका भी आगामी समय में होगा। अनंत भक्ति में कहते हैं कि ऐसे निष्णात होकर के भक्ति करी थी कि वीणा का तार टूट जाने पर विक्रिया से और अपने शरीर से नस निकाल करके जोड़ दी थी और फिर भक्ति की थी। विक्रिया का काम है, ऐसे नहीं समझना, नहीं तो फिर तो आप कहो कि क्या डॉक्टर भी थे, डिसेक्शन करके निकाल करके लगा दियो, बाईपास सर्जरी करवा दी क्या, ये वैसा नहीं। विक्रिया है, विद्याधर है। कहने का आशय यह है कि भक्ति में भंग ना हो। यहां तो बीच में कोई और दूसरा काम आ जाए तो पूजा समाप्त, बाहर निकल गए। नहीं, संसार कहीं से कहीं चला जाए, मेरी भक्ति में व्यवधान नहीं आ सकता है, तब वो भगवान की भक्ति है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि भक्ति के पीछे जो छिपा हुआ अनुराग है, जो भक्ति के पीछे भावों की शुद्धि है, जो श्रद्धा है, वो महत्वपूर्ण है। एक पंडित जी थे, पंडित जी कौन बैठे हुए तो बुरा ही नहीं माने, जे तो पंडित जी इनको उनसे ही कह दई, जो बुरा माने ही नहीं पंडित जी क्योंकि आजकल के पंडित जी मान सकते। वे पंडित जी रोज जो है स्नान को जाती थी नदी में और डुबकी लगाते, डुबकी लगा के थोड़ी देर वहीं पर रुके रहते, एक आध सेकंड, और फिर निकल आते, जय जय करते हुए चले जाते। एक गड़रिया जो है रोज देखता था कि पंडित जी जो है इसमें आते हैं, स्नान करते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, वहीं थोड़े रुके रहते हैं, क्या करते होंगे। तो पंडित जी से हाथ जोड़ के पूछा कि मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूं, भगवान आप ज्ञानवान हो, विद्वान हो, और तो हमारे सब समझ में आया कि आप स्नान करते हो, लेकिन ये डुबकी लगा के वहां पर रुके गए तो रहते हो। कहती अरे तेरे क्या समझेगा मूर्ख है, मैं तो भगवान के दर्शन करता हूं। दर्शन? अरे भगवान के दर्शन होते ऐसे डुबकी लगाने से? उसने कहा कि हाँ होते। इसलिए हमने पहले कहा था कि पंडित जी कोई बुरा ही नहीं मानना, क्योंकि जितना बुद्धि बनाया जा सकता है बना सकती है अज्ञानी आदमी को क्या वो खुद ही नहीं जानता कि क्या चीज है, सो जैसी बता दो उसी मान दे। अब उसने जो है बड़ा ये ना, अब विद्वान है, पंडित जी हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते, कहते कि देखो डुबकी लगाने से दर्शन होते। सो ध्यान तो वो पंडित जी की पहले ही आ गए नदी किनारे, और बस उसने भी बिल्कुल जैसे पंडित जी नहाते थे वैसे ही नहाया, स्नान किया और डुबकी लगाई, और बस अब इंतजार है दर्शन का।
एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, कोई फर्क नहीं, दर्शन ही नहीं हो रहे। उसने कहा नहीं, जब तक दर्शन नहीं होंगे, देर लग जाए लग जाए, सांस निकल जाए निकल जाए, दर्शन तो पंडित जी को होते तो मैं भी दर्शन करूंगा, डुबकी लगाने से दर्शन होते हैं। भगवान के प्रति अनुराग और श्रद्धा से दर्शन होते भैया। क्या है उसमें कहानी में कि जल देवता को दया आई कि मर जाएगा, इतनी देर से डूबा सादे है, तो वो आकर के उसने कहा कि मांग क्या वरदान चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, दर्शन ही करने थे और क्या करने, सब चीजें हो गई। इसमें बाहर आ गया पंडित जी के, जब तक आ गए पंडित जी, पंडित जी ने कहा अरे तुम भीतर डूबे थे, कहते आने तो हो गए दर्शन। अब पंडित जी को मुश्किल हुई कि हमने झूठी बोली थी और देखो सच्ची में हो गए, इनकी जिंदगी भर की पूजा से नहीं हो पाए और उसके जो है पांच मिनट में अंतरंग के परिणामों में विशुद्धि थी, साथ में भगवान के प्रति अनुराग था और निष्काम भक्ति थी, दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरे सम्यक दर्शन में जैनंद भगवान का दर्शन निमित्त है, मुझे तो वही चाहिए। आपके दर्शन से मुझे अपने भीतर की दृष्टि की निर्मलता चाहिए, अगर ऐसा भाव है तो फिर ऐसी जो अनंत भक्ति है वो भी तीर्थंकर जैसे पद को पाने में कारण न बने, ऐसा हो नहीं सकता है, अवश्य कारण बन सकती है। इसी भावना के साथ अपन भी भक्ति करें अनंत भगवान की, कि हमें उनके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हो,
जीवों के जो Thank you. गम।